आज हम मा ते तुंग की राजनीतिक दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए मा ते तुंग की राजनीतिक दर्शन पर चर्चा करने से पहले हम चीन में कम्युनिस्ट शासन का एक अवलोकन करें। कम्युनिस्ट सरकार गृह युद्ध में विजयी होकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने समाजवादी आदर्शों के अनुसार देश में शासन को स्थापित किया। इसके लिए जनता के प्रतिनिधियों की एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसे चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा, चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस महासभा के 662 सदस्य थे, जो विविध राजनीतिक दलों और प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। महासभा का अधिवेशन 21 सितंबर 1949 को शुरू हुआ और 10 दिन तक चलता रहा। इसमें न केवल चीन के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया, अपितु साथ ही उन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आदर्शों का भी निर्धारण किया गया, जिन्हें चीन की नई सरकार को अपने सम्मुख रखना है। चीन का नया संविधान समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया और यह निश्चय किया गया कि चीन में सामाजिक व्यवस्था को कायम किया जाए। चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा ने देश की केंद्रीय सरकार का प्रधान चेयरमैन माओ ते तुंग को निर्वाचित किया। माओ ते तुंग चीन में कम्युनिस्ट दल के प्रधान नेता हैं और कुमिंगतांग दल को परास्त करने के कार्य में उनका प्रमुख योगदान था। कम्युनिस्ट चीन में उनका वही स्थान था जो कम्युनिस्ट रूस में लेनिन और स्टालिन का था। इसी महासभा ने केंद्रीय सरकार के लिए 6 उप प्रधानों का भी निर्वाचन किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मदाम शन्यात सेन, श्री चांग लांग, जनरल चू तेह, श्री काओ कांग, श्री लियू साओ ची और जनरल ली ची सिंह। मदाम शन्यात सेन कुमिंगतांग दल के संस्थापक डॉक्टर शन्यात सेन की पत्नी है और चियांग काईसेक के साथ उनका मतभेद था। उनका विचार था कि चियांग काईसेक के नेतृत्व में कुमिंगतांग दल ने अपने संस्थापक की नीति एवं आदर्शों का परित्याग कर दिया है और श्री चांग लांग चीन की डेमोक्रेटिक लीग के अध्यक्ष थे। यह लीग वामपक्ष की अनुयायी होते हुए भी कम्युनिस्ट दल से पृथक स्थिति रखती थी। जनरल चू तेह कम्युनिस्ट सेनाओं के प्रधान सेनापति थे और कुमिंगतांग सेनाओं को परास्त करने के लिए कम्युनिस्ट दल की ओर से जिस जन स्वतंत्र सेना का संगठन किया गया था उसके प्रधान संचालक थे। श्री काओ कांग मंचूरिया की प्रादेशिक सरकार के प्रधान थे। श्री लियू साओ ची कम्युनिस्ट दल के नेता थे और उनकी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी थे। जनरल ली ची सिंह क्रांतिकारी कुमिंगतांग दल के अध्यक्ष थे। कुमिंगतांग दल के सभी सदस्य महासेनापति चियांग काईसेक के अनुयायी नहीं थे। उसके अनेक व्यक्ति चियांग काईसेक की नीति से मतभेद रखते थे और यह समझते थे कि महान सेनापति ने डॉक्टर शन्यात सेन के आदर्शों का परित्याग कर दिया है। इन लोगों ने अपनी पृथक पार्टी का भी संगठन किया था और जनरल ली ची सिंह इन्हीं के नेता थे। एक प्रधान और 6 उप प्रधानों के अतिरिक्त चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा ने एक केंद्रीय जनशासन काउंसिल, सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट काउंसिल का भी निर्वाचन किया, जिसमें सदस्यों की संख्या 56 थी। यह काउंसिल महासभा की उप समिति की स्थिति रखती थी, जिसका कार्य चीनी सरकार की नीति का निर्धारण करना था। 56 सदस्यों के अतिरिक्त चीनी रिपब्लिक के प्रधान और उप प्रधान अपने पदाधिकार से इस काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार इस काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या 63 थी। यह काउंसिल केंद्रीय चीनी सरकार की नीति का निर्धारण ही नहीं करती थी, अपितु उसे यह भी अधिकार दिया गया था कि राज्य के लिए कानूनों का निर्माण भी कर सके। केंद्रीय जनशासन काउंसिल के निरीक्षण में कार्य करने के लिए 4 काउंसिलों का निर्माण किया गया था। ये चार काउंसिलें इस प्रकार है। पहली काउंसिल शासन सभा, जिसे हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इस सभा के सदस्यों की संख्या 21 थी। इसकी वही स्थिति रखी गई जो लोकतंत्र राज्य में मंत्रिमंडल की होती है। यह व्यवस्था की गई कि चीन का प्रधानमंत्री इस शासन सभा का अध्यक्ष हो, उसे अपने कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए चार उप प्रधानमंत्री रहें। प्रधानमंत्री और चार उप प्रधानमंत्रियों के अतिरिक्त इस शासन सभा के 15 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए। साथ ही इस सभा के सचिव के रूप में एक अन्य पदाधिकारी को नियुक्त किया गया, जिसे सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं। कम्युनिस्ट चीनी सरकार के प्रधानमंत्री के पद पर श्री चाउ एन लाई को नियुक्त किया गया। दूसरी जन क्रांतिकारी सैनिक काउंसिल, यानी कि पीपल्स रिवोल्यूशनरी मिलिट्री काउंसिल का गठन किया गया। इस काउंसिल को सैन्य संचालन का कार्य सौंपा गया। तीसरी सर्वोच्च जन न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के नाम से जानते हैं। इस न्यायालय को चीन के न्याय विभाग के संचालन का कार्य दिया गया। चौथी जन निरीक्षण विभाग, इसे यह कार्य प्रदान किया गया कि यह शासन के विविध अंगों का निरीक्षण करे। चार काउंसिलों और विभागों का निर्माण करते हुए डॉक्टर सन्यात सेन के शासन संबंधी विचारों और आदर्शों को ध्यान में रखा गया था। ये विभाग प्रायः उसी ढंग से बनाए गए थे जैसा कि डॉक्टर सन्यात सेन ने प्रतिपादित किया था। 30 सितंबर 1949 को चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा ने अपना कार्य समाप्त कर दिया और 1 अक्टूबर 1949 को चीन में समाजवादी रिपब्लिक की बकायदा स्थापना कर दी गई। चीन के कम्युनिस्ट दल की दृष्टि में 1 अक्टूबर 1949 का दिन बहुत महत्व रखता है। कम्युनिस्ट चीन में यह माना जाता है कि इस दिन से चीन के इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ होता है। गृह युद्ध की परिस्थिति के कारण यह संभव नहीं था कि चीन में सर्वत्र शांति और व्यवस्था की स्थापना की जाए। यद्यपि कुमिंगतांग दल और उसकी सैन्य शक्ति को परास्त किया जा चुका था, पर चीन जैसे विशाल देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करना सुगम बात नहीं थी। यही कारण है कि कम्युनिस्ट चीन में सर्वसाधारण जनता के वोटों द्वारा किसी केंद्रीय पार्लियामेंट के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की जा सकी। चीनी जनता की केंद्रीय परामर्शदात्री महासभा के सदस्यों की नियुक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होकर नहीं हुई थी, पर इसमें संदेह नहीं। इस महासभा के सदस्य उन विविध दलों का प्रतिनिधित्व करते थे जो समाजवादी व्यवस्था के पक्षपाती व वाम पक्ष के थे। महासभा ने कम्युनिस्ट चीन के शासन के संबंध में जिस नीति व आदर्शों को स्वीकार किया था, उसके अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि चीन के जिन जिन प्रांतों व प्रदेशों में शांति और व्यवस्था कायम होती जाए, उनमें जनता को वोटों द्वारा स्थानीय व प्रांतीय सभाओं का निर्वाचन करने का अधिकार दिया जाए और इन सभाओं को कानून बनाने व शासन पर नियंत्रण करने के अधिकार भी प्रदान किए जाएं। इस नीति के अनुसार बाद में चीन के सभी प्रदेशों में जनता द्वारा निर्वाचित सभाओं की स्थापना की गई। आइए अब हम कम्युनिस्ट शासन में चीन की उन्नति पर एक नज़र डालें। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था के अनुसार लोकतंत्र रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। इस समय से अगले 2 वर्षों में चीन ने जो असाधारण उन्नति की, वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। चीन की इस प्रगति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। विशाल चीन में राजनीतिक एकता स्थापित करने में कम्युनिस्ट सरकार को असाधारण सफलता मिली थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन बहुत बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का अन्य कोई देश चीन का मुकाबला नहीं करता। इतने विशाल देश में राजनीतिक एकता कायम करना साधारण बात नहीं है। मंचू सम्राटों के शासनकाल में चीन के विविध प्रदेश सम्राट की अधीनता को स्वीकार करते थे, पर साम्राज्य के अंतर्गत अनेक राज्य व प्रदेश क्रियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र थे और मंचू सम्राटों का उन पर प्रभुत्व केवल नाम मात्र को ही था। 1911 में जब चीन में राज्य क्रांति हुई, तो विकेंद्रीभाव डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हो गई और विविध सिपहसालार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हो गए। कुमिंगतांग दल ने चीन में राष्ट्रीय एवं राजनीतिक एकता को स्थापित करने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। कम्युनिस्ट सरकार इस कार्य में वस्तुतः सफल हुई है। फार्मूशा के अतिरिक्त चीन के सब प्रदेश इस समय कम्युनिस्ट शासन में हैं। 1950 के मार्च मास तक हैनान और फार्मूशा द्वीपों के अतिरिक्त शेष संपूर्ण चीन पर कम्युनिस्ट सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया था। बाद में हैनान पर भी कम्युनिस्ट सेनाओं ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। 1951 के मध्य भाग में तिब्बत में कम्युनिस्ट सेनाओं ने प्रवेश किया और वहां की सरकार ने पेकिंग की केंद्रीय कम्युनिस्ट सरकार की अधीनता स्वीकृत कर ली। मंचू शासन के काल में और उससे पूर्व भी तिब्बत चीन का अधीनस्थ राज्य माना जाता था। 1912 के बाद चीन में कोई शक्तिशाली व्यवस्थित केंद्रीय सरकार नहीं रह गई थी और तिब्बत की स्थिति क्रियात्मक दृष्टि से एक स्वतंत्र राज्य के समान हो गई थी। पर अब तिब्बत फिर चीन का एक अंग बन गया है और विशाल चीन में अविकल रूप से राजनीतिक एकता कायम हो गई है। कम्युनिस्ट सरकार इस प्रयत्न में है कि फार्मूशा को भी कुमिंगतांग सरकार की अधीनता से मुक्त कर उसे भी अपने अधीन कर ले, इस प्रकार संपूर्ण चीन को एक शासन में लाया जाए। इसमें संदेह नहीं कि चीन को एक शासन में लाने और उसके विविध प्रदेशों में व्यवस्थित शासन स्थापित करने में कम्युनिस्ट लोगों को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय दृष्टि से चीन में सब निवासी एक नहीं है। चीनी लोगों के प्रति अतिरिक्त इस देश में तिब्बती, मंगोल, मुस्लिम, मियाओ, यिस आदि अनेक जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं। इन विविध प्रकार के लोगों में राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकना सुगम कार्य नहीं है। कम्युनिस्ट सरकार ने अल्पसंख्यक जातियों के संबंध में यह नीति निर्धारित की कि उन्हें अपनी जातीय विशेषताओं जैसे भाषा, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज आदि को विकसित करने का पूरा अवसर दिया जाएगा और चीन के लोकतंत्र गणराज्य में उनकी स्थिति बहुसंख्यक चीनी लोगों के समान व समकक्ष मानी जाएगी। इस नीति को क्रिया में परिणित करने के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के लोगों को पृथक व स्वतंत्र राज्यों के रूप में संगठित करने का प्रयत्न किया, जो विशाल चीनी लोकतंत्र गणराज्यों के अंतर्गत रहते हुए भी अपनी पृथक व स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। अल्पसंख्यक जातियों के इन पृथक स्वतंत्र राज्यों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अभ्यंतर मंगोलिया के उदाहरण को आपके सम्मुख रखना उपयोगी होगा। मंगोलिया के निवासी मंगोल जाति के थे और उनकी संख्या 8 लाख से अधिक है। मंगोल लोगों के अतिरिक्त इस प्रदेश में चीनी लोग भी पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं और अभ्यंतर मंगोलिया में बसे हुए चीनी लोगों की संख्या 15 लाख से कम नहीं है। यह स्पष्ट है कि अभ्यंतर मंगोलिया में मंगोल लोग बहुसंख्या में न होकर अल्पसंख्या में हैं, पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस प्रदेश को संख्या में न रखकर सभी को समान अधिकार देने की बात की। पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार एक स्वतंत्र और पृथक राज्य के रूप में परिणित की ताकि मंगोल लोग वहां अपनी जातीय विशेषताओं का सुचारू रूप से विकास कर सकें। मंगोल लोगों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा दी जाती है और मंगोल भाषा में साहित्य का बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है। मंगोल भाषा में अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं और अभ्यंतर मंगोलिया के सब शिक्षणालयों में मंगोल भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार की नीति तिब्बत, सिंकियांग आदि अन्य प्रदेशों में भी अपनाई गई है, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासी जातीय दृष्टि से चीनी लोगों से भिन्न हैं। कम्युनिस्ट लोगों की इस नीति के कारण विशाल चीन में रहने वाले अल्पसंख्यक जातियों के लोग संतोष अनुभव करते हैं। माओ त्से तुंग की सरकार ने चीन में समाजवादी व्यवस्था के अनुसार आर्थिक नीति का अनुकरण किया। उसने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, आइए अब हम उसके बारे में चर्चा करें। पहला कदम, जापानी लोगों के स्वामित्व में जो कारखाने, खाने, रेलवे, जहाज, बैंक व अन्य व्यवसाय थे, उन सब को राज्य ने अपने स्वामित्व या अपने अधिकार में ले लिया। ख, इसी प्रकार क्विमिंगटोंग दल के पूंजीपतियों और संपन्न लोगों के हाथों में विद्यमान कल कारखानों व अन्य व्यवसाय को उनसे छीनकर राज्य के स्वामित्व में ले आया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन के कुल व्यवसायों का 50% के लगभग भाग राज्य के स्वामित्व व अधिकार क्षेत्र में आ गया। ग, कम्युनिस्ट सरकार ने यह प्रयत्न नहीं किया कि व्यवसायों और व्यापार का संचालन व्यक्तियों के हाथों में सर्वथा न रहने दिया जाए। चीन के जो व्यवसायपति और व्यापारी क्विमिंगटोंग दल के साथ संबंध नहीं रखते थे, उन्हें यह अवसर दिया गया कि वे पहले के समान अपने व्यापार और व्यवसायों का संचालन करते रहें, पर उनके संबंध में भी यह व्यवस्था की गई कि वे कल कारखानों आदि के प्रबंध के मामले में उसी नीति का अनुसरण करें जो राज्य द्वारा संचालित कल कारखानों के लिए बनाई गई हैं। राज्य द्वारा संचालित कारखानों, बैंकों, रेलवे आदि में मजदूरों का बहुत अधिक महत्व है। कारखानों के कर्मचारी उनके प्रबंधन में भी हाथ बटाते हैं और वे आर्थिक उत्पत्ति में वृद्धि करने के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहते हैं। भूमि संबंधी कानून में सुधार करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष रूप से उद्योग किया। चीन में जमीन संपन्न जमींदारों की व्यक्तिगत संपत्ति थी। ये जमींदार भोग विलास में जीवन व्यतीत करते थे और कृषि की उन्नति पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। किसानों की दशा बहुत खराब थी। चीन की 80% जनता अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित थी, पर बहुसंख्यक किसान खेती से इतनी आमदनी प्राप्त नहीं कर पाते थे जिससे कि वे अपना निर्वाह भली भांति कर सकें। कम्युनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की कि जमीन पर से जमींदारों के स्वत्व को नष्ट कर दिया जाए और जमींदारों को अपनी भूमि के बदले में किसी भी प्रकार का मुआवजा न दिया जाए। वे केवल इतनी जमीन अपने पास रख सके जिस पर वे स्वयं खेती कर सके और जो उनके गुजारे के लिए पर्याप्त हो। जमींदारों से जो जमीन ली गई वह उन किसानों में बांट दी गई जो स्वयं उस पर खेती करने के लिए तैयार थे। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि करोड़ों गरीब चीनी किसान खेती के लिए जमीन प्राप्त करने में समर्थ हुए। जमीन की व्यवस्था करने का कार्य स्थानीय ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया। देहातों में जो स्थिति पहले शक्तिशाली व संपन्न जमींदारों की थी, वह अब ग्राम सभाओं को प्राप्त हुई। इन ग्राम सभाओं के सदस्य ग्राम के किसान ही हो, यह व्यवस्था भी की गई। पर यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि भूमि संबंध इन सुधारों को सारे देश में एक ही बार लागू कर सकना सुगम व क्रियात्मक नहीं था। चीन जैसे विशाल देश में इन क्रांतिकारी सुधारों को एक साथ आरंभ करना किसी भी प्रकार संभव नहीं था। अतः कम्युनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की कि धीरे धीरे इन सुधारों को चीन के विभिन्न प्रदेशों में लागू किया जाए। कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1951 तक यह स्थिति आ गई थी कि चीन के 2/3 से भी अधिक जमीन से जमींदारों के स्वत्व का अंत कर उसे किसानों में विभक्त कर दिया गया था। जिन लोगों को इन भूमि संबंधी सुधारों से लाभ पहुंचा, उनकी संख्या 30 करोड़ से भी अधिक थी। इसमें संदेह नहीं कि 2 साल के थोड़े से समय में कृषि संबंधी इतने महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सुधार करके कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के देहातों की दशा में बड़ा भारी परिवर्तन ला दिया था। अब चीन का किसान जमींदार का अर्धदास ना होकर अपनी उपज का स्वयं मालिक हो गया और इसी कारण वह अधिक से अधिक पैदावार का प्रयत्न करने लगा। चीन में अनाज की समस्या के हल होने में इससे बहुत अधिक सहायता मिली। इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शुरू में चीन के सब किसान आमदनी की दृष्टि से एक समान स्थिति नहीं रखते थे। वहां ऐसे भी किसान मौजूद थे जो अधिक संपन्न थे और जो यांत्रिक शक्ति की सहायता से बड़े बड़े खेतों में खेती किया करते थे। कम्युनिस्ट सरकार ने इन किसानों से अतिरिक्त भूमि को छीनकर उसे भूमिहीन किसानों में विभक्त करने की नीति को तुरंत नहीं अपनाया, क्योंकि उसका ख्याल था कि देश की वर्तमान स्थिति में इन संपन्न किसानों से अनाज की पैदावार में सहायता मिलती है। चीन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या यह थी, वहां नदियों में बहुत बाढ़ें आती रहती थी, पर इन बाढ़ों के कारण जहां लाखों एकड़ जमीन से खेती नष्ट हो जाती थी, वहां लाखों आदमी भी बेघरबार हो जाते थे। कम्युनिस्ट सरकार ने नदियों पर बांध बांधकर व अनेक अन्य उपायों का अवलंबन कर इन बाढ़ों को रोकने का प्रयास किया। अपने शासन के पहले 2 वर्षों में कम्युनिस्ट सरकार ने नदियों पर जो बांध बनवाया उनका आकार बहुत ही विशाल है। इन बांधों का परिणाम यह हुआ कि चीन की नदियों में बाढ़ों की आशंका बहुत कम हो गई, फसलों का नष्ट होना रुक गया और चीन में अनाज की पैदावार बहुत बढ़ गई। चीन जो अपनी खाद्य समस्या को बहुत कुछ हल कर चुका था, उसका एक मुख्य कारण यह है कि बाढ़ों के कारण करोड़ों रुपए की फसलें अब वहां नष्ट नहीं होती हैं। इन बांधों के लिए कम्युनिस्ट सरकार ने देहात की जनता का सहयोग लिया था और इनका निर्माण करते हुए मुख्यतः श्रम को ही प्रयुक्त किया गया था। कृषि और व्यवसाय की उन्नति के कारण चीन के विदेशी व्यापार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के मध्य 1877 से लेकर 1949 तक चीन विदेशों में जो माल विक्रय के लिए भेजता था उससे कहीं अधिक विदेशों से क्रय करता था। उसके आयात माल की मात्रा निर्यात माल से अधिक होती थी। इसका परिणाम यह था कि चीन की निरंतर अधिक से अधिक गरीब होता जा रहा था। पर 1949 के बाद कम्युनिस्ट शासन में इस स्थिति में परिवर्तन आया और चीन के निर्यात माल की मात्रा आयात माल की अपेक्षा अधिक हो गई। चीन का विदेशी व्यापार मुख्यतः रूस व अन्य समाजवादी देशों के साथ था। शिक्षा के विस्तार पर भी कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष ध्यान दिया। 1949 तक चीन में शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। शिक्षित व साक्षर लोगों की संख्या वहां 14% से अधिक नहीं थी। कम्युनिस्ट शासन के प्रयत्न से वहां शिक्षा में जिस ढंग से उन्नति हुई वह काफी आश्चर्यजनक थी। इसमें संदेह नहीं कि कम्युनिस्ट सरकार ने चीन में निरक्षरता के विनाश एवं शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जनता का शासन स्थापित हो जाने के कारण चीन में असाधारण शक्ति का संचार हुआ। विदेशी साम्राज्यवाद से तो चीन पूर्ण रूप से मुक्त हो ही चुका था, साथ ही वह अब संसार के प्रमुख शक्तिशाली राज्यों में भी गिना जाने लगा। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का संसार के राज्य में प्रथम स्थान है। इस विशाल जनता की सामूहिक शक्ति के कारण चीन में आर्थिक उन्नति हुई है। उससे यह देश भौतिक साधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में समर्थ हुआ। कोरिया के युद्ध में उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार की सहायता करने में जो असाधारण सैन्य शक्ति चीन ने प्रदर्शित की, उसके कारण किसी भी राज्य के लिए चीन की अपेक्षा कर सकना संभव नहीं रहा। आइए अब हम चीन के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर एक नज़र डालें। चीन के लोकतंत्र गणराज्य चाइनीज डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। अगले दिन 2 अक्टूबर को रूस के सोवियत यूनियन ने चीन की नई कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृत कर लिया और उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिया। बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, उत्तरी कोरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक, पूर्वी जर्मनी, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अल्बानिया और वियतनाम की सरकारों ने रूस का अनुसरण किया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में स्थापित चीनी सरकार की सत्ता को स्वीकार किया। इन सब राज्यों में समाजवादी व्यवस्था विद्यमान थी और चीन की साम्राज्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान करके इन्होंने किसी असाधारण मार्ग का अनुसरण नहीं किया था, पर कई ऐसे राज्यों ने भी चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्वीकृत किया जिनमें कम्युनिस्ट व समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं थी। ये राज्य थे भारत, स्वीडन, डेनमार्क, वर्मा, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और पाकिस्तान। इनके अतिरिक्त बाद में ब्रिटेन, सिलोन, नॉर्वे, इजराइल, अफगानिस्तान और नीदरलैंड ने भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृत करने के साथ उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। संसार के प्रमुख राज्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा था जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को चीन की वैध सरकार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अब तक चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्थान नहीं मिल सका था। इस अंतर्राष्ट्रीय संघ में चीरकाल तक चियांग काई शेक की कुमिंगतोंग सरकार के प्रतिनिधियों को ही स्थान प्राप्त था। यद्यपि इस सरकार की सत्ता केवल फार्मूशा द्वीप तक ही सीमित है और वास्तविक चीन में कहीं भी उसका अधिकार नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ में चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्थान देने के लिए जो भी प्रस्ताव उपस्थित हुए अमेरिका ने उसका विरोध किया। इसी कारण अब तक कम्युनिस्ट चीन को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना समुचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका। पर इसमें संदेह नहीं कि कम्युनिस्ट सरकार अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बना चुकी है और चीन के मामले में अपितु एशिया के संबंध में कोई भी ऐसी व्यवस्था संभव नहीं जिसमें कम्युनिस्ट चीन का सहयोग प्राप्त ना हो। माओ त्से-तुंग ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की कौशल एवं चीन के विकास के आर्थिक उन्नति का एक खाका रखने के कारण काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए कि चीन को एक नई ऊंचाई तक और विकास के एक नए सोपान पर ले जा सके। माओ त्से-तुंग की राजनीतिक दर्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक दर्शन का प्रेरणा स्रोत मुख्य रूप से डॉक्टर सन्यात सेन की द्वारा प्रतिपादित विचारधाराओं को रखा था और डॉक्टर सन्यात सेन के विचारों एवं कम्युनिस्ट विचारों को अपनाते हुए उन्होंने चीन की उन समस्याओं का अंत करने का प्रयास किया जिसे अब तक की चीनी सरकारें, ये या तो वो मांचू सरकार हो या चियांग काई शेक की सरकार हो, पूर्ण रूप से सफल करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। चीन को विश्व मंच पे एक ताकत के रूप में स्थापित करने में माओ त्से-तुंग ने काफ़ी सराहनीय योगदान दिया। चीन की जनता में उन्हें वही स्थान प्राप्त है जो रशिया में स्टालिन और लेनिन को प्राप्त है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माओ त्से-तुंग का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली होगा जिसने चीन को, जो अब तक विश्व में अपनी उपस्थिति एक मजबूत ताकत के रूप में नहीं करा सका था, को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का ही नहीं अपितु एक सशक्त रूप में स्थान दिलाने में कामयाबी हासिल की।